Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jai Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. Jai Radha Shyam Sundar Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Ashtotra Satahityavayam Grace Abhisharanarabhinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai Shri Shri Radha Shyam Sundar Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Granthraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jayamudirahe. Nashta prayeshva bhadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavati uttama shloke Bhaktir bhavati naishthiki. Granthraj Srimad Bhagavatam Tisra skand दूसरा अध्याय भगवान कृष्ण का स्मरण श्लोक संख्या 23. अहो बकी यम स्तना काल कूटम जिघांसया अपायया Api asadhi lebhe gatim dhatri uchitam tataha anyam kam va dayalum sharanam vrajema. Aho bakiyam stanakalakutam. जिघांसया पाययदप्य साधवी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम अपाययत पिलाया अपि यद्यपि असाध्वी कृतघ्न लेभे प्राप्त किया गतिम गंतव्य धात्री उचिताम धाई के उपयुक्त ततः जिसके आगे अन्यम दूसरा कम अन्य कोई वा निश्चय ही दयालुम कृपालु शरणम शरण व्रजेम ग्रहण करूंगा। अनुवाद और तात्पर्य भी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, ओह भला मैं उनसे अधिक दयालु अन्य की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से चूस जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तात्पर्य, यहां पर अपने शत्रु पर भी भगवान की चरम कृपा का उदाहरण प्राप्त है। कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है, जिस तरह विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है। कृष्ण को बाल्यकाल में पूतना नामक असुरिनी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। क्योंकि वह असुरिनी थी, इसीलिए उसके लिए यह जान पाना असंभव था कि भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए भी भगवान से कम न थे। अपनी भक्तिन यशोदा को प्रसन्न करने के लिए उनका शिशु बनने के भगवान का मान घटा नहीं। भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करें या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करें, इससे तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। वे सदैव वही ब्रह्म बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने पूतना का मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि उसने स्नेही माता का स्वांग भरकर कृष्ण को अपना स्तन चूसने दिया। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मानदंड है। अतएव भगवान के अतिरिक्त अन्य कौन परम शरण हो सकता है। अनुवाद दोहराइएगा। ओह, भला मैं उनसे अधिक दयालु अन्य की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से चूसे जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। ओम ज्ञान सुमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबने ये श्लोक पहले सुना होगा, आप में से कई भक्तों के लिए ये श्लोक कंठस्थ भी होगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस श्लोक के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। दया या कृपा भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। वैसे तो भगवान अनंत दिव्य गुणों से संपन्न हैं, सुशोभित हैं, लेकिन उनके ऐसे कई गुण हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे उनका सौंदर्य है या उनकी कृपा है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मायावादी लोग होते हैं, जो भगवान के दिव्य रूप को मानते नहीं हैं, वो ऐसा कहते हैं कि परम सत्य के कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण है वो, निर्विशेष, निर्गुण, निराकार, उनका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं। परंतु श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये भगवान को अपमान करने के बराबर है। यदि हम किसी से कहें, कभी कभी ऐसे देखा जाता है, दो व्यक्तियों के बीच में वाद होता है, तो एक व्यक्ति दूसरे से कहता है, अरे तुम अंधे हो क्या, तुम देख नहीं पाते हो, मतलब आंखें नहीं है क्या? या कोई कहता है, अरे तुम बहरे हो क्या, तुमने सुना नहीं क्या कहा गया था, अरे तुम गूंगे थे क्या, उस समय कुछ बोला क्यों नहीं। तो जब हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो हम अपमानित कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि इसकी कोई इंद्रियां ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है। तो इसी प्रकार से मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान परम सत्य जो है उनके कोई गुण ही नहीं है, ये भी अपमानित करने के बराबर है। एक बार श्री प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा था अपने भक्तों से, एक मनुष्य है और एक पहाड़ है जो बहुत विशाल है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, आप बताइए। एक और एक आदमी है, मनुष्य है, दूसरी ओर है पहाड़, बहुत विशाल पहाड़, तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य चेतन व्यक्ति है और चेतना के कारण उसके अंदर दिव्य, उसके अंदर गुण है, अनेक गुण है, इसलिए वो श्रेष्ठ कहलाता है पहाड़ से। तो हर एक व्यक्ति के भीतर ऐसे गुण हैं, तो सारे जीवों के जो स्रोत हैं भगवान, उनके अंदर भले कैसे गुण नहीं हो सकते हैं, बल्कि उनके अंदर समस्त दिव्य गुण विद्यमान है, परिपूर्णता में। हमारे अंदर तो, हम जीवों के अंदर तो बिल्कुल लेश मात्र ये गुण विद्यमान रहते हैं, परंतु भगवान में पूर्णतया। हालांकि भगवान के गुण असंख्य हैं, अनगिनत हैं, फिर भी श्रील रूप गोस्वामी पाद ने सारे शास्त्रों का अध्ययन करके ऐसे 64 प्रमुख गुणों का उल्लेख किया है अपने भक्ति रसामृत सिंधु में। उनमें से कई ऐसे गुण हैं जो कृपा या दया को प्रकाशित करते हैं। जैसे एक गुण है कि भगवान क्षमाशील हैं। क्षमाशील अर्थात कि अन्यों के अपराध को सहन करते हैं। यह देखा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति सहनशील नहीं होता और कृपालु नहीं होता, वो दूसरों के अपमान को सहन नहीं कर पाएगा। जब दूसरे उसका अपमान करेंगे, तो वो दूसरों के प्रति ऐसी भावना रखेगा कि कब मैं बदला लूंगा उसका, कब उसको सबक सिखाऊंगा, या द्वेष भावना रखता है उस व्यक्ति के प्रति, क्षमा नहीं करता उसे, हमेशा याद रखता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे बुरा बर्ताव किया था इतने साल पहले। परंतु भगवान क्षमाशील है, बहुत ही शीघ्र किसी के अपराध को क्षमा कर देते हैं, बुरा नहीं मानते। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने माँ के गोदी में रहता है और कभी कभी माँ के ऊपर प्रहार करता है, मुक्का प्रहार करता है, माँ को थप्पड़ मार देता है, परंतु माँ थोड़ी उस बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाएगी और जेल में भर्ती कराएगी। तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने जीवों के द्वारा जो भी अपराध किए जाते हैं उनको इसी भाव से स्वीकार करते हैं, अपराध स्वीकार नहीं करते हैं और जल्दी से क्षमा कर देते हैं। रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं यमुनाचार्य के स्तोत्र रत्नावली से कि एक बार जब इंद्रदेव ने एक कौवे का रूप धारण किया था और सीता देवी के ऊपर प्रहार किया था अपनी चोंच से, तो श्री रामचंद्र बड़े क्रोधित हो गए थे, परंतु ज्यों ही उस कौवे ने अर्थात इंद्रदेव ने श्री रामचंद्र के शरण को ग्रहण किया, प्रणाम किया, क्षमा याचना की, तो तुरंत प्रभु रामचंद्र ने क्षमा कर दिया। हालांकि यह बहुत बड़ा अपराध था, किसी के शरीर के ऊपर हमला करना यह बहुत बड़ा अपराध होता है। मन से अपराध करना है किसी का या किसी को किसी के प्रति अपने वाणी से अपराध करना ये तो अपराध है ही, परंतु शारीरिक रूप से हमला करना ये तो बहुत बड़ा हमला होता है। फिर भी प्रभु रामचंद्र ने क्षमा कर दिया। तो ये है उनके गुण। वैसे अपमान सहन करने की शक्ति भगवान की तो बहुत ज्यादा है। भगवान ने शिशुपाल की भी तो अपमान सहन किए। रूप गोस्वामी कहते हैं कि शिशुपाल ने कितने सारे गालियां दी श्री कृष्ण को, अपराध करता रहा शिशुपाल बचपन से, बल्कि जीव गोस्वामी कहते हैं कि अनेक जन्मों से वो अपराध करते आ रहा था, फिर भी भगवान ने सहन किया। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान ने तो एक सीमा तक सहन किया, फिर मार ही तो डाला ना, फिर कैसे कृपालु हुए। परंतु बात यह है, और इसकी चर्चा थोड़ी देर में हम करेंगे, कि भगवान ने जो हत्या की, जो वध किया शिशुपाल का, उससे शिशुपाल का उद्धार हुआ, शिशुपाल की भलाई हुई। तो भगवान ऐसे कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे किसी का नुकसान हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान बहुत क्षमाशील है, साथ साथ में उनके अंदर एक करुणा की भावना भी है। ये और एक गुण है जो रूप गोस्वामी कहते हैं इन 64 गुणों में, करुणा। और वो उदाहरण देते हैं उन राजाओं का जिनको कि मगधेंद्र, मगध के राजा जरासंध ने गिरफ्तार करके रख लिया था, और उन्होंने श्री कृष्ण को द्वारका में एक पत्र भेजा था कि हमें बचाइए, हम बहुत ही पीड़ित अवस्था में हैं। तो श्री कृष्ण ने आकर उनको बचा लिया। इन राजाओं का जीवन अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन सूर्य रूपी श्री कृष्ण जब प्रविष्ट हुए वहां पर तो उनके जीवन में उजाला हो गया, उनका जीवन बदल गया, और सारे राजाओं के आंखें जो है वो आंसू से भर गए, प्रेम के आंसू से, भगवान कृष्ण की करुणा को देखकर। दूसरा उदाहरण श्री रूप गोस्वामी देते हैं वो भीष्म देव का है। और भीष्म देव जब अपने तीरों के शैया पर लेटे हुए थे, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण भूल गए कि वो भगवान है स्वयं। तेजी से दौड़ के आए भीष्म देव के पास, और वहां पर श्री भीष्म देव के तिरुभाव के समय वहां रहना चाह रहे थे। भीष्म देव से इतना स्नेह था श्री कृष्ण का कि जैसे ही उन्होंने सुना कि भीष्म देव अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तीरों की शैया पर लेते हुए हैं, तो सब कुछ छोड़ के तुरंत वहां पर दौड़ पड़े। इसलिए रूप गोस्वामी जब यहां प्रणाम करते हैं इस श्लोक में, वो कहते हैं मैं कृष्ण की करुणा को प्रणाम करता हूं। कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं, कृष्ण की करुणा को मैं प्रणाम करता हूं। ये करुणा जो है इतनी ज्यादा है भगवान कृष्ण की, इतनी विशेष है कि वो ये भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। इस प्रकार से रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं भगवान कृष्ण की कृपा इस गुण का। साथ साथ और भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है भगवान श्री कृष्ण का कि अपने प्रिय भक्तों का उद्धार तो करते ही हैं, परंतु असुरों का भी उद्धार करते हैं, जिन असुरों का कि वो वध करते हैं। इन 64 गुणों में से 50 गुण ऐसे हैं जो लेश मात्र जीवों के अंदर भी पाए जाते हैं, और 5 गुण ऐसे हैं जो साधारण जीवों में नहीं पाए जाते, परंतु शिव जी जैसे महान देवताओं में अंश रूप में पाए जाते हैं। अंशेन गिरीशादिषु, तो गिरीश मतलब शिव जी, और आदि मतलब जब जीव गोस्वामी कहते हैं जब भगवान ब्रह्मा जी आदि बनकर आते हैं, जब कोई योग्य जीव नहीं रहता है उस पद को स्वीकार करने के लिए, तो उस समय भी भगवान ब्रह्मा जी होने के नाते अपने समस्त शक्ति को, अपने समस्त गुणों को प्रकट नहीं करते हैं, तो उनके अंदर उस समय केवल 55 गुण रहते हैं, जैसे कि शिव जी के अंदर रहते हैं। परंतु शिव जी में हालांकि ये 55 गुण हैं, परंतु ये अधिक जो 5 गुण हैं जो जीवों में नहीं हैं, वो शिव जी में भी अंश रूप मात्र में रहते हैं, पूर्ण रूप में नहीं, पूर्ण रूप में केवल श्री कृष्ण में रहते हैं। और फिर ऐसे और 5 गुण हैं जो शिव जी में नहीं पाए जाते, जो केवल विष्णु तत्वों में पाए जाते हैं, और रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं इन गुणों का। अविचिन्त महाशक्ति ही कोटि ब्रह्मांड विग्रह अवतारावली बीजम हतारि गतिदायक आत्मा राम गणाकर्षी अमी कृष्णे किल भूताः। अविचिन्त महाशक्ति ही कि भगवान श्री हरि, भगवान नारायण, इनकी शक्ति अविचिन्त हमारे चिंतन के बाहर है, असीमित है उनकी शक्ति। कोटि ब्रह्मांड विग्रह, उनका विशाल शरीर इतना बड़ा है कि कोटि कोटि ब्रह्मांडों के समान है, इतना बड़ा है। और ये भी कहा जा सकता है कि उनके विशाल शरीर से कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। अवतारावली बीजम, समस्त अवतारों के बीज हैं वो। और फिर वो कहते हैं हतारी गतिदायक, हरि मतलब शत्रु, हत मतलब हत्या करने वाले, गतिदायक है जो उनके शत्रु होते हैं, जिनकी हत्या वो करते हैं, जिनका वध करते हैं, उनको भी वो एक अच्छी गति प्रदान करते हैं। यहां तक कि कभी कभी श्री कृष्ण ऐसे असुरों को मुक्ति भी दिलाते हैं, मुक्ति की बात तो दूर है, भक्ति भी दिलाते हैं, और उनको अपने नित्य पार्षद का स्थान भी दिलाते हैं गोलोक वृंदावन में। तो ये गति अलग अलग हो सकती है, गति मतलब एक अच्छा स्थान। और जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि साधारणतः ये देखा जाता है कि भगवान कृष्ण के जो अन्य अवतार होते हैं वो मुक्ति इतनी आसानी से प्रदान नहीं करते, कभी कभी स्वर्गलोक की प्राप्ति भी करा देते हैं उन असुरों को जिनका वध वो करते हैं, क्योंकि यहां शब्द का इस्तेमाल किया गया है गतिदायक है, अच्छी गति। और इसी श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं अमी कृष्णे किल अद्भुताः, कि ये समस्त 5 गुण जो हैं, अर्थात ये 55 गुण, ये नारायण या विष्णु में तो अवश्य है ही, परंतु श्री कृष्ण में जब ये गुण दिखाई पड़ते हैं तो बहुत अद्भुत होते हैं, अद्भुत रूप से प्रदर्शित होते हैं श्री कृष्ण में। तो हालांकि अविचिन्त महाशक्ति ये नारायण की भी है, परंतु श्री कृष्ण के अंदर ये शक्ति का गुण जो है बहुत ही मधुर रूप से प्रकट होता है, बहुत ही अद्भुत रूप से। ठीक उसी प्रकार से हतारी गतिदायक, जब नारायण आदि किसी जीव का उद्धार करते हैं तो उसे कभी कभी अच्छी गति देते हैं इस भौतिक जगत के भीतर, भले वो पृथ्वी लोक के अंदर हो या वो स्वर्ग लोक हो या अधिक से अधिक, ऐसे जीव को वो निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करा देते हैं। परंतु श्री कृष्ण केवल भौतिक जगत के भीतर गति नहीं प्रदान करते, केवल निराकार ब्रह्म के अंदर लीन होने की गति नहीं प्रदान करते, बल्कि पूतना के जैसे वो उस जीव को अपना नित्य पार्षद भी बना देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की विशेष बात है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूतना आई है, एक सुंदर महिला का रूप स्वीकार करके, तो कृष्ण ने अच्छे गुण देखे पूतना के। भगवान कृष्ण ने ये नहीं देखा, जैसे कि यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, कि ये मुझे मारने आई है। नहीं, पूतना में कृष्ण ने देखा कि पूतना मुझे दूध पिलाने आई है एक मां की तरह। तो वो मां का स्वरूप जो है, जो मां का गुण है, वो श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। तो प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं, कहा जाता है कि एक नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है, जिस तरह विष के आधार से अमृत ले लिया जाता है। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि इस ये पूतना का हृदय जो है विष से भरा हुआ है, जिघान से आ असाध्वी ईर्ष्या से भरा हुआ है, और वो किसी बुरे विचार को लेकर कृष्ण के पास आ रही है। परंतु उस विष के भीतर एक अच्छा गुण भी तो था। वो क्या था? वो मां का स्वरूप लेकर आई थी, कृष्ण को दूध पिलाना चाहती थी। तो कृष्ण ये अच्छा गुण देख लिया और सोचा कि ठीक है, ये मां बनना चाहती है ना मेरी, तो उसे मां का स्थान दिलाना चाहिए। धात्री उचितम ततः अन्य, तो ऐसे स्थान कृष्ण ने पूतना को दिला दिया, पूतना का वध करके, एक धात्री का स्थान गोलोक वृंदावन में, अर्थात श्रीमती यशोदा देवी को की सहायता करने वाली, ऐसे एक गोपी का स्थान पूतना को दिला दिया है। ये तो बहुत ही दुर्लभ चीज है। अहो बकी, बकी मतलब पूतना, बकासुर अर्थात बक, बक की बहन है इसलिए बकी, ये दोनों भाई बहन थे बकासुर और पूतना, और ये सब रिश्तेदार हुए होंगे सब। कंस के जितने भी मित्र थे, कंस ने सबको बुलाया कि जाके कृष्ण की हत्या करो। पूतना पहले भी अनेक बच्चों की हत्या कर चुकी थी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जब कंस ने सुना माया देवी दुर्गा देवी के कहने पर कि तुम तो बड़े मूर्ख हो हे कृष्ण, कि तुम्हारे हत्या करने वाले बच्चे का जन्म तो हो चुका है, तो कंस को इतना भय हुआ कि कंस ने सारे ब्रज में अपने असुरों को, सहायकों को भेज दिया कि जितने बच्चे नवजात शिशु हैं उन सब की हत्या कर दो, जिनका जन्म जो है पिछले एक महीने में दो महीने में हुआ होगा, वहां घर घर में जाना, गांव गांव में जाना और सारे बच्चों की हत्या कर देना। तो उनमें से पूतना जो है वो प्रमुख थी, सब जगह जाकर बच्चों को लेकर मार डालती थी। तो अब यहां कृष्ण को मारने के लिए आई, तो यहां देखा कि ये कृष्ण बड़े विशेष हैं, तो मुझे वेश बदल के आना होगा। तो सुंदर स्त्री का एक मातृत्व के भाव से अपने स्वरूप को प्रकट करके आई। माता यशोदा और अन्य गोपियों ने बिल्कुल संशय नहीं किया, सोचा कि ये तो बहुत अच्छी महिला है, हो सकती है कोई देवलोक से देवी आई हो, इतनी सुंदर लग रही थी, और उनको छोड़ दिया अंदर। भगवान ने जब पूतना का स्तनपान किया तो दूध तो पी लिया, जहर भी पी लिया, लेकिन कौन सा जहर है जो श्री कृष्ण को मार सकता है। भगवान श्री कृष्ण जब पूतना का स्तनपान किया तो इतनी पीड़ा हुई पूतना को, इतनी पीड़ा हुई कि इस रूप को, इस सुंदर महिला के रूप को वो धारण नहीं कर पाए, अपने मूल रूप को स्वीकार करना ही पड़ा, और बहुत जोर जोर से चीखते चीखते वो बच्चे को लेकर बाहर मैदान में चली गई। वो श्री कृष्ण को छुड़वाना चाहती थी गोदी से, लेकिन कृष्ण नहीं छोड़ रहे थे। और इस प्रकार से बाहर जाके कृष्ण ने इतने जोर से स्तनपान किया कि दूध के साथ, विष के साथ पूतना का प्राण भी खींच लिया। तो ऐसे कहा जाता है कि जो पूतना के अंदर ईर्ष्या थी, द्वेष था, जो दुर्गुण थे, अनर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण ने स्तनपान करके सब खींच लिए, और इसलिए वो दर्द हुआ उस समय पूतना को। पूतना का पूरी तरह से शुद्धिकरण हो गया। परंतु जब सारे अनर्थ निकल गए, द्वेष भी निकल गया, तो रहा क्या? मातृत्व का भाव, क्योंकि पूतना मां बनकर आई थी कृष्ण के पास, बस वही एक रह गया। तो कृष्ण ने देखा कि ठीक है, अभी दुर्गुण तो चले गए, अब क्या रहा? ये मेरी मां बनना चाहती है, तो चलो मां का स्थान दे दो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को केवल मुक्ति नहीं, भक्ति भी दे दी और एक अपने नित्य पार्षद का स्थान दे दिया। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब यहां मुक्ति की बात हो रही है कि भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं असुरों को जिनका वध वो करते हैं, तो मुक्ति शब्द के अंतर्गत हमें जान लेना चाहिए भक्ति भी हो सकता है। देखिए, बहुत ही विरला है ये भक्ति प्राप्त करना, सुदुर्लभ भक्ति का एक गुण है। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति के छह लक्षणों में सुदुर्लभ एक गुण है। इसका मतलब है कि भक्ति को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान किसी को आसानी से संसार का भोग दे देते हैं, आसानी से निराकार ब्रह्म लीन होने का वरदान भी दे देते हैं, परंतु भक्ति इतने आसानी से नहीं देते हैं भगवान। जिस प्रकार से एक बहुत धनी व्यक्ति जो बहुत दानी है, उसका हृदय बहुत बड़ा है, बहुत बड़े रकम दान में भले दे रहा हो, परंतु वो ऐसी कोई वस्तु दान में नहीं देगा जो अनेक पीढ़ियों से उसके घर में चलते आया है। कोई विशेष खजाना है, कोई विशेष चीज है जो उनके जो है वरिष्ठ अनेक पीढ़ियों पहले से जो चलते आया हो, वो चीज नहीं देगा। पैसे दे देगा, चलो तुम 5 लाख ले लो, 10,000 ले लो, पर ये तो बहुत ही मूल्यवान चीज है मेरे लिए, मैं नहीं दूंगा। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अन्य सब कुछ आसानी से देते हैं, परंतु भक्ति आसानी से नहीं देते। परंतु यहां हम क्या देख रहे हैं पूतना के उदाहरण में, कि उस चीज को जो कि भगवान श्री कृष्ण भक्तों को भी, साधकों को, तपस्वियों को आसानी से नहीं देते, उन्होंने एक ऐसे असुरिनी को, एक ऐसे राक्षसी को प्रदान किया जो कि कृष्ण को मारने के लिए आए थे। तो इससे हम जान सकते हैं कि कृष्ण कितने कृपालु हैं, हृदय में बिल्कुल द्वेष नहीं रखते हैं। ये कृष्ण का गुण है। इसलिए यहां पर उद्धव जी कहते हैं, अहो बकियम स्तन कालकूटम, स्तन के ऊपर एक विष लगा के आई थी, जिघांसया अपि असाध्वी, वो असाध्वी थी और अपायजक, इसको पिलाने आई थी श्री कृष्ण को ये कालकूट का विष। लेभी गतिम, तो ऐसे गति प्राप्त हुई उस राक्षसी को, कौन सा गतिम, धात्री उचिताम, एक धात्री की गति प्राप्त हो गई। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, कि इनसे बड़ा, श्री कृष्ण से बड़ा दयालु व्यक्ति कौन हो सकता है जो शरण लेने योग्य है। तो ये है श्री कृष्ण की कृपा शक्ति, इतने कृपालु हैं श्री कृष्ण। और जब श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में हतारी गति दायक इस गुण की चर्चा करते हैं, जिससे कि भगवान की कृपा का गुण प्रकाशित होता है, उसमें वो दो श्लोक कहते हैं। एक है, पराभवम फेनिल वक्त्रम वक्त्राम च बंधम च भीतिम च मृतिम च कृत्वा पवर्ग दातापि शिखंड मौले त्वम शात्रवाणाम अपवर्गतोसी। यहाँ पे दो चीजों का वर्णन रूप गोस्वामी कहते हैं, पवर्ग और अपवर्ग। प वर्ग मतलब प फ ब भ म, वो कहते हैं प मतलब पराभवम, पराजय, हार जाना। ये संसार का वर्णन करते हैं। ये संसार की परिभाषा क्या है? ये पवर्ग है, जिसमें केवल प अर्थात पराभव है, पराजय। फिर फेनिल वक्त्राम, फेनिल प मतलब फेन। आपने कभी देखा होगा कि घोड़े को या कभी कभी बैल के मुंह से फेन निकलता है जबकि वो बहुत परिश्रम कर चुका होता है। तो यहां पर भी दुनिया में सभी लोग बहुत परिश्रम करते हैं, मानो कि उनके मुख से फेन निकल रहा है। बंधम च, तो प फ और ब, ब मतलब बंधन। सभी लोग कर्म बंधन और जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे हुए हैं। और भ मतलब भीति, हर एक प्राणी भयभीत है। और म, म मतलब मृतिम, मृत्यु। तो ये है प फ ब भ म, तो ये पवर्ग कहलाता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं पवर्ग दातापि शिखंड मौले, हे शिखंड मौली, हे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचे मणि, आप सबको पवर्ग दिलाते हैं, विशेष करके जो आपके शत्रु हैं या आपसे जो ईर्ष्या करते हैं, जो आपके भक्त नहीं हैं, उनको आप पवर्ग दिला देते हैं। परंतु उन्हीं शत्रुओं को कभी कभी त्वम शात्रवाणां अपवर्ग दोषी, ऐसे शत्रुओं को कभी कभी आप अपवर्ग भी दिलाते हैं, पवर्ग से उल्टा बिल्कुल, अपवर्ग। पवर्ग मतलब संसार का बंधन और अपवर्ग मतलब मुक्ति। तो कभी कभी हे कृष्ण, आप ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों को भी अपवर्ग प्रदान करते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, यहां रूप गोस्वामी कहते हैं। आगे वो कहते हैं, चित्रम मुरारि सुरवैरिपक्ष त्वया समन्ताद अनुभत्त युद्धः अमित्र वृंदानि अविभिद्य भेदम मित्रस्य कुर्वन् अमृतम प्रयाति। वो कहते हैं चित्रम मुरारी, ये बहुत विचित्र बात है, अद्भुत बात है हे मुरारी, हे कृष्ण, कि सुर वैरी पक्ष, सुर गणों से जो वैर करते हैं अर्थात जो असुर गण होते हैं, जो असुर गणों के प्रति आप किस प्रकार से कृपा करते हैं, ये बड़ी अद्भुत बात है। क्या है? त्वया समन्ताद अनुबद्ध युद्ध। ये असुर गण कभी कभी पूरी ताकत लगाकर आपसे युद्ध करते हैं। अमित्र वृंदानी, वो आपके अमित्र हैं, आपके शत्रु हैं वो। अविभिद्य भेदम, कभी कभी वो कोशिश करते हैं जब आप युद्ध करते हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर देखा गया, तरह तरह के योजनाएं होते हैं युद्ध करने के लिए, और वो चाहते हैं कि वो भेद करके चले जाएं। कृष्ण ने जो एक योजना बनाई है कि सैनिक इस प्रकार से इस आकार में खड़े होंगे, तो उस आकार को तोड़कर अंदर जाना चाहते हैं, जैसे अभिमन्यु चक्र व्यूह बनाया था। तो हालांकि वो भेद करना चाहते हैं लेकिन भेद नहीं कर पाते हैं, फिर भी ऐसे शत्रुओं को मित्रस्य कुर्वन् आप मित्र बना देते हैं, और अमृतम प्रयाति, और उनको अमृतत्व उनको प्रदान कर देते हैं, उनको भगवान के धाम में भेज देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मित्रस्य कुर्वन् का और एक अर्थ है, कि मित्र का अर्थ यह भी है सूर्य, सूर्यदेव। तो सूर्य के प्रकाश में प्रवेश करना, तो आप हालांकि ये जो असुर हैं जो आपके खिलाफ युद्ध करते हैं पूरी ताकत लगाकर और आप तक पहुंच नहीं सकते हैं, फिर भी ऐसे असुरों की हत्या करके आप उनको मित्र से कुर्व, मित्र लोक के बाहर, सूर्य लोक के भीतर से आप उनको प्रवेश देते हैं, अर्थात निराकार ब्रह्म ज्योति में, जहां की केवल प्रकाश ही प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है। तो ये है आपकी कृपा, आपकी करुणा। तो भगवान इस प्रकार से न केवल भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं परंतु अपने तथाकथित शत्रुओं के ऊपर भी कृपा करते हैं। भगवान की दृष्टि से कोई शत्रु नहीं है, परंतु कोई अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को भगवान का शत्रु मानता है या भगवान को शत्रु मान लेता है, परंतु भगवान केवल करुणा के दृष्टि से ही हर एक जीव के प्रति दृष्टि रखते हैं। शुकदेव गोस्वामी जब अपने मां के गर्भ में थे तो बाहर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि वह डर रहे थे कि बाहर आके फिर मैं माया में फंस जाऊंगा तो क्या होगा। व्यासदेव जी ने बहुत याचना की कि बेटा चले आओ, बाहर चले आओ, अच्छा नहीं लगता, 12 साल हो गए भी मां के गर्भ में हो, अब बाहर तो आना चाहिए, कितना समय मां के गर्भ में अंदर रहोगे। नहीं नहीं, मैं माया में पड़ जाऊंगा। अरे नहीं पड़ोगे, आ जाओ। अंततः व्यासदेव को स्वयं श्री कृष्ण को बुलाना पड़ा। श्री कृष्ण ने जब आश्वासन दिया तब शुकदेव गोस्वामी संतुष्ट हुए, उनका जन्म हुआ। और जन्म होते ही तुरंत वो निकल पड़े, मैं माया में नहीं पड़ना चाहता, मैं पारिवारिक जीवन में रहूंगा तो माया में पड़ जाऊंगा, तो निकल पड़े। और व्यासदेव उनके पीछे पीछे आए, हा पुत्र कहके, अरे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। हालांकि व्यासदेव इतने महान ऋषि हैं, फिर भी पारिवारिक आसक्ति ऐसी वस्तु होती है जो गृहस्थ आश्रम में स्वाभाविक है, तो व्यासदेव उनके पीछे चले गए और नहीं माने, शुकदेव आगे चलते गए। तो ऐसे कहा जाता है कि व्यासदेव जी के शिष्यों ने सोचा कि चलो हम श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में कुछ कहते हैं ताकि शुकदेव आकर्षित हो जाए वापस आने के लिए। तो उन्होंने ये प्रसिद्ध श्लोक कहा जो कि श्रीमद् भागवत का एक बहुत सुंदर श्लोक है, सबसे सुंदर श्लोकों में से एक माना जाता है ये प्रसिद्ध श्लोक। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। इसमें व्यासदेव जी के शिष्यों ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया। बरह अपीड़म, कि उनके बालों में मोर पंख है। बरहा पीड़म नटवर, वो सुंदर रूप से नृत्य करते हैं। वपुह कर्णयोह कर्णिकारम, अपने दोनों कानों में कर्णिकार फूल है, उनके कान ऐसे सजाए हुए हैं। विभ्रत वासह कनक कपिशम, और उन्होंने किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं जो चमक रहे हैं, स्वर्ण रंग के हैं, पीतांबर। वैजयंती च मालाम, और वैजयंती माला पहनी हुई है, पांच अलग अलग प्रकार के फूलों से, रंगों से। रंध्रान वेणोर, जो वेणों के छेद हैं, अधर सुधया पूरयन, और उनमें वो अपने ओठों से अमृत भर रहे हैं, अर्थात मुरली बजा रहे हैं। और गोप वृंदे, जो कृष्ण भगवान के ग्वाल बाल हैं, वो पीछे पीछे जा रहे हैं कृष्ण के। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति ही, तो गीत कीर्ति, कीर्ति का गान कर रहे हैं ये ग्वाल बाल। और ये वृंदावन धाम भी धन्य हो रहा है क्योंकि श्री कृष्ण के पद चिन्हों से ये धाम सुशोभित है, अंकित है। तो शुकदेव गोस्वामी ने ये श्लोक सुना, रुक गए, सोचा कि अरे ये परम सत्य, ये श्री कृष्ण है, इतने आकर्षक हैं, इतने सुंदर हैं, तो मुझे वापस लौट के जाना चाहिए, इस श्री कृष्ण के बारे में और सुनना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर मन में एक संशय आया, संशय था कि ठीक है, श्री कृष्ण तो सर्व आकर्षक हैं, सबसे सुंदर हैं, और उनका शरण लेना उचित है, फिर भी यदि वो मेरा शरण मुझे शरण नहीं दे तो, यदि मुझे वो स्वीकार नहीं करे तो फिर क्या होगा? तो भयं पे सुखदेव रुक गए, तो उनकी बात जान गए व्यासदेव जी के शिष्य, और फिर उन्होंने ये श्लोक कहा, आज का श्लोक, अहो बकीयम सनकाल कूटम, जिससे वो साबित करना चाहते थे कि अवश्य कृष्ण स्वीकार करेंगे, चिंता नहीं करो, लौट के आओ, कृष्ण का शरण ग्रहण करो, कृष्ण अवश्य शरण ग्रहण करेंगे, देंगे, शरण देंगे तुम्हें, चले आना। तो फिर श्री कृष्ण क्षमा कीजिए सुखदेव गोस्वामी लौट के चले आए। वैसे और एक आचार्य ने कहा है कि फिर दो सुखदेव हुए, एक आगे चलते गए और दूसरे रहे कि सुखदेव बने, गृहस्थ आश्रम में रहे। तो ये प्रसंग हमने सुना है, कई जगह ऐसे हम कहा जाता है कि भक्त समाज में तो ये एक बात मानी जाती है, परंतु इसका प्रमाण हम नहीं, कौन से शास्त्र से है, महाराज आपको पता है ये प्रसंग कौन से शास्त्र है, किन के टीका में से है, ये दो श्लोक बढ़ा पीड़म और अहो बकीयम सनकाल कालकूटम, ये जो प्रसंग है कि सुखदेव चले गए और फिर सौंदर्य का हाँ, तो राधारमण महाराज जी कह रहे हैं कि हाँ ये दो श्लोक बढ़ा पीडम कृष्ण के सौंदर्य के लिए है, और ये अहो बकी यम स्तन कालकूटम, ये श्लोक भगवान की कृपा के लिए है। लेकिन कौन से शास्त्र से है कि सुखदेव वहां चले गए और लौट के आए इन दो श्लोकों के द्वारा, ये कौन से शास्त्र नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन अनेक भक्तों से सुना है ऐसे। तो खैर, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है जिसका उल्लेख यहाँ पर उद्धव जी कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे श्री कृष्ण से अधिक कृपालु कौन है जो शरण करने योग्य है। हरे कृष्ण। तो कोई टीका टिप्पणी प्रश्न आदि हरे धन्यवाद प्रभु जी। जब हम भक्ति करते हैं अनुकूल भाव से, तो प्रयास करते हैं भगवान में मन लगे, लेकिन जैसे हम सुनते हैं कि जो असुर लोग होते हैं, अभक्त हैं, वो भगवान से द्वेष करते हैं और फिर भी भगवान उनको अपनी कृपा देते हैं। और यहाँ तक कि जैसे हम पढ़ रहे हैं सातवां स्कंद भागवतम में लिखा गया है कि भगवान से द्वेष करके, शत्रुता करके जितना मन लगता है, उतना भक्ति करने से, अनुकूल भाव से भगवान से इतना मन लग नहीं पाता है, ऐसा कहते हैं सुखदेव गोस्वामी शुरुआत के प्रसंग में। तो अगर उन लोगों जो शत्रुओं को भगवान इतनी कृपा करते हैं, तो जो लोग अनुकूल भाव से हम लोग प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति करना, हम वो भगवान की कृपा को कैसे समझें?
यदि असुरों के ऊपर जो कि भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान ऐसी कृपा करते हैं, तो फिर भक्तों के ऊपर कितना और कृपा करेंगे? स्वाभाविक बात है, परंतु भक्तों को भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए भगवान के हाथों मारे जाना नहीं पड़ता, यूं ही भगवान ले जाते हैं। और हां, ऐसा नहीं है कि हर बार जब भगवान किसी असुर का वध करते हैं तो वो उनको अपना नित्य पार्षद बनाते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े उदाहरण हैं, परंतु अधिकतर वो असुरों को निराकार ब्रह्म में लीन करा देते हैं या किसी ब्रह्मांड के भीतर ऊंचे गति को प्रदान कर देते हैं। परंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हो जाते हैं, उनके लिए भगवान के धाम में, भगवान के लोकों में, वैकुंठ लोकों में या गोलोक वृंदावन में जाना ये निश्चित है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, माइक।
प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो अलग अलग भगवान के जो शत्रुता रखने पर उनको अच्छी गति मिली, पूतना जैसे शिशुपाल, तो जो अभी जो लोग भक्ति में नहीं आए हैं उनके मन में ये गलत धारणा आ सकती है कि अगर हम भक्ति भी ना करें तो शत्रुत्व भगवान के प्रति शत्रुत्व को बनाए रखें तो भी हमें अच्छी गति मिल जाएगी, तो ऐसे इसके प्रति उत्तर में कैसे?
सही है, परंतु उनको भी रावण और हिरण्यकश्यप जैसे असुर बनना चाहिए, फिर यह संभव है। यदि उनकी वो ताकत नहीं है कि इतने बड़े असुर वो नहीं बने, तो फिर भक्त बनना ही ज्यादा आसान है। नहीं, भगवान किसी साधारण जीव के साथ युद्ध नहीं करेंगे आके। ये कौन है? हिरण्यकश्यप, रावण, शिशुपाल, ये सब कौन है? भगवान के पार्षद तो है जो भेजे गए हैं यहाँ पर भगवान के साथ युद्ध करने के लिए, भगवान क्योंकि वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, और कौन कर सकता है उनके साथ युद्ध, कौन योग्य है यहाँ पर? इसलिए वहां से अपने भक्तों को भेज देते हैं। और अन्य भी ऐसे हैं जो अनेक जन्मों से द्वेष करते करते आ जाते हैं भगवान के सामने, उनका भी उद्धार हो ही जाता है। परंतु सबसे सुलभ और निश्चित और अनुकूल तरीका यही है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करें, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, और फिर हम सबसे ऊंची गति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अंतिम प्रश्न यहाँ पर, माइक दीजिएगा।
पहले प्रश्न का ये भी उत्तर हो सकता है कि भगवान अपने भक्तों पर ज्यादा कृपालु होते हैं। अब पूतना की गति हुई और वो भी गोलोक वृंदावन में गई, लेकिन उनको इतना ऊंचा स्थान नहीं मिला जितना कि माता यशोदा को मिला था, वो उनकी असिस्टेंट ही बनी। तो भगवान अपने भक्तों से ज्यादा,
देखिए कई ऐसे, ये जो कई जगह है ना, यहाँ रिजर्व हो चुके हैं, रिजर्वेशन हो गया है, कोई वैकेंसी नहीं है। जो मुख्य स्थान है ना, वो कोई नहीं पा सकता। माता यशोदा ही है, कोई माता यशोदा नहीं बन सकते। नंद महाराज हैं, सुदामा श्रीदामा वही हैं, कोई नहीं बन सकता। राधा रानी है, ललिता विशाखा वही हैं, ये दूसरा कोई नहीं बन सकता। बल्कि प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं कि यदि कोई ऐसे सोचे कि मैं नंद महाराज बनूंगा तो ये मायावाद है। जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण बनना चाहता है तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यशोदा माता बनना चाहते हैं या कोई नंद महाराज बनना चाहते हैं तो ये भी अपराध है, ये मायावाद है। हमें चाहिए कि हम उनके दास बने, उनके दासी बने, सेवक बस। ये जो जितने भी हम नाम पढ़ते हैं ना शास्त्रों में, भक्ति रसामृत सिंधु में हो या भागवत में हो या अन्य ग्रंथों में, ये सब स्थान रिजर्व हैं, हम वो नहीं बन सकते। तो सबसे ऊंचा स्थान जो संभव है हमारे लिए, वो तो मिल ही गया ना, वात्सल्य रस में भले हो, माता यशोदा की सहायता करने का की संधि मिल गई ना, अवसर मिल गया, सबसे ऊंची बात यह।
मैं कह रहा हूँ भगवान अपने भक्तों पर ज्यादा कृपालु होते हैं, क्योंकि पूतना को वो स्थान नहीं मिला।
एक पूतना को तो स्थान मिल गया ना, एक भक्त का स्थान मिल गया, वहां नित्य पार्षद बन गई वो। माता यशोदा तो पहले से ही भक्त हैं, वो तो नित्य पार्षद हैं भगवान की गोलोक वृंदावन में। परंतु पूतना जो कि यहां पर थी इस भौतिक सृष्टि में, इतना वैर कर रहे थे श्री कृष्ण से, उनको भी भगवान के मां की तरह ही एक स्थान मिल गया। यशोदा तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन यशोदा के समान उनकी तरह एक स्थान मिल गया, जो जीव के लिए जो वात्सल्य रस में प्रेम करना चाहते हैं भगवान से, तो सर्वोच्च है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।